الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بچوں کے مسائل مدنی چینل کڈس پر اور کڈس مدنی چینل پر الحمدللہ کئی پروگرام آپ کے لیے نت نئے انداز سے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں اسے نشر کیا جا رہا ہے آپ ضرور بھی ضرور خود بھی دیکھا کریں اپنے بچوں کو بھی دکھائیں انشاءاللہ مدنی چینل کڈس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بہترین فرق آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی آپ کو بہترین فرق نظر آئے گا ایک شخص کا واقعہ میں آپ کو سناؤں ان کے پاس ایک ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری یہ تھی کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے
جی
انہوں نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ روز مرہ کے جو شہر کے حالات ہوں اسے لکھ کر آپ ہمیں رپورٹس بھیجا کریں دہلی کی کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو وہ نکلتے تھے باہر باہر نکل کر وہ رپورٹ جو ان کو بنانی ہوتی تھی بنا کر وہ رپورٹ بھیج دیا کرتے تھے تو اچھا ایک دن یہ ہوا کہ یہ نہیں نکل سکے کسی وجہ سے اب رپورٹ بھیجنی ضروری ہوتی ہے ان کو یہ کہ یہ وہ بادشاہ کا دور تھا اگر میں نہیں بھیجوں گا تو بادشاہ اپنے لوگ بھیجے گا اور پھر میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو انہوں نے ایک فیک رپورٹ بنائی جعلی رپورٹ جو روز بنا دیتے اس کی تو ملتی جلتی کو رپورٹ بنا لی اور ان کے پاس ایک بچہ تھا بھانجے تھے یا بھتیجے تھے بچے تھے ان کو کہا کہ بیٹا یہ رپورٹ ہے یہ رپورٹ آپ جا کر وہاں دربار میں ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ جو ہے اس میں دے کر آ جاؤ اب وہ جانے لگے وہ جو بچے تھے ان کی عمر اتنی تو نہیں تھی لیکن وہ راستے میں سوچ رہے تھے کہ مامو جان گئے تو نہیں ہے کہیں اور انہوں نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ گھر بیٹھ کر بنائی ہے تو رپورٹ سچی بھی نہیں ہوگی جو جیسا ہونا چاہیے اور میں ان کے غلط کام پر ان کی مدد کر رہا ہوں تو یہ بھی درست نہیں ہے تو انہوں نے وہ رپورٹ دریا میں پھینک دی پانی میں اچھا اب بادشاہ کے دربار میں وہ رپورٹ تو پہنچی نہیں اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ جاؤ بھائی رپورٹ لے کر آؤ آج کیا ہوا پوزیشن کیا رہی تو لوگ ان کے گھر پر آ گئے کہ آج آپ نے رپورٹ نہیں بھیجی کہ رپورٹ تو میں نے وہ بچے کے ذریعے بھیجوا دی ہے آپ کو نہیں ملی بولے نہیں ملی تو انہوں نے بچے کو بلایا اور کہا کہ وہ بیٹا رپورٹ تو کہا وہ رپورٹ تو میں نے پانی میں پھینک دی کہا پانی پھینک دی اتنی محنت سے رپورٹ بنائی تو پانی میں پھینک دی وہاں میں نے تو پانی میں پھینک دی کیوں پانی میں پھینک دی کہا وہ غلط بات تھی آپ نے رپورٹ غلط بنائی تھی جھوٹ تھا تو میں جھوٹ پر آپ کی مدد کیسے کرتا یہ بات جب بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو وہ بھی بڑی حیرت میں تھے بڑے خوش ہوئے کہ بچہ بڑا خوف خدا والا ایماندار سمجھدار ہے جس بچے نے یہ ایمانداری اور سمجھداری کا کام کیا اس بچے کا نام تھا احمد کیا نام تھا
احمد
اور انہیں دنیا جانتی ہے حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں جو حنبلی مسلمان ہیں جیسے ہم حنفی ہیں نا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم فالو کرتے ہیں نا تو جو امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں حنبلی تو حنبلی جو مسلمان ہیں یہ ان کے امام ہے جیسے ہمارے امام اعظم امام ہے یہ بھی ہمارے ہی ہیں امام ہی ہیں लेकिन हम इमाम आजम को फॉलो करते हैं, है ना। कोई शाफ़ई हैं, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह को फॉलो करते हैं, कोई मालिकी हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह को फॉलो करते हैं, तो कोई हम्बली होते हैं, और हम हनफी हैं। दुनिया में हनफी ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा है? हनफी ज़्यादा हैं दुनिया में हनफी ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा हनफी हैं। तो लेकिन ये कि चारों इमाम सच्चे थे, अच्छे थे और भाइयों जैसे थे, ठीक है ना। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
तो पता चला कि हमें किसी के गलत काम पर उसका साथ नहीं देना चाहिए, किसी के झूठ पर उसका साथ नहीं देना चाहिए, किसी की बेईमानी पर साथ नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने पाकीज़ा कलाम कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि नेकी और भलाई पर मदद करो, बुराई और गुनाह पर मदद मत करो, ठीक है। तुम्हें नेकी और भलाई पर मदद करनी चाहिए, लेकिन बुराई पर और गुनाह पर किसी की मदद
नहीं करनी चाहिए।
कोई झूठ बोलने का बोले तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई बुराई करने का कहे तो बुराई
नहीं
करनी चाहिए। हम सबको अच्छाई इख्तियार करनी है और अच्छाई पर कायम रहना है, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये एक वाकिया आप तक पहुंचाया, बच्चों तक भी पहुंचाया, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें मेरी बड़ों से दरख्वास्त है, अपने बच्चों को झूठ ना बुलवाएं। ये कई ऐसे बड़े होते हैं जो अपने बच्चों को झूठ बुलवाते हैं, बेटा मना कर दो, अब वो घर पे ही नहीं है, अब वो घर पे ही नहीं है। अब बेटा बेटा है, बेटा बाहर निकल के बोल दे, अब वो कह रहे हैं कि बेटा मना कर दो, अब वो घर पे ही नहीं है। तो बोले अबू कहाँ है? अबू तो घर पे है। तो फिर जो होगा ना वो बहुत मसला हो जाएगा। तो ये चीजें बच्चों को मत सिखाइए। अम्मी को भी चाहिए कि बच्चों को ना, बेटा बोल दो अम्मी सो रही है, अब अम्मी किचन में अम्मी सो रही है, तो बेटा बोल देगा अम्मी कह रही है अम्मी सो रही है, अम्मी नींद में बोलती है बेटा, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना आपके लिए। तो ये ट्रेनिंग गलत है, गलत ट्रेनिंग। बच्चों को दुरुस्त ट्रेन करें, अच्छे अंदाज से ट्रेन करें, सच्चाई के साथ ट्रेन करें। आप बच्चों को सच बोलना सिखाएंगे, बच्चा आपके साथ भी हमेशा सच बोलेगा। आप झूठ की तरबियत करेंगे, बच्चे ने आगे जाकर आपके साथ भी फिर खुदा ना खासा झूठ बोलना है। आप बच्चे को धोखा देना सिखाएंगे, ऐसा ना बच्चा आगे जाकर आपको भी धोखा दे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के साथ तरबियत ना करें। साथ ये भी अर्ज कर दूं, बच्चे के साथ ऐसी तरबियत ना करें और बच्चे के सामने से काम भी ना करें, पीछे से भी ना करें। ऐसा नहीं है बच्चे के सामने ना करें तो मैं कह रहा हूँ पीछे से कर लें, नहीं, अल्लाह से डरना है। लेकिन यहाँ चूंकि बात ट्रेनिंग और तरबियत की खास तौर पर मैं कर रहा हूँ, आप तो चलो बच्चे को नहीं कह रहे, लेकिन बच्चा देख रहा है कि अबू घर में, और अबू आज घर काम पर ही नहीं गए, फोन आया आप काम पर नहीं गए, तो कह रहे बस वो अभी अभी बाहर से आया हूँ। अरे बच्चा बोले कि अबू कहाँ बाहर से आयो, बच्चा सोचे कि अबू तो सुबह से घर में, अबू तो बाहर कहीं गए रहे ही नहीं, गए ही नहीं है, तो अबू झूठ बोल रहे हैं। अब बच्चा जब अबू को अम्मी को बड़ों को झूठ बोलता हुआ देखेगा, या बड़े भाई को अम्मी अबू के साथ झूठ बोलता देखेगा, या अम्मी अबू को औरों के साथ झूठ बोलता देखेगा, तो बच्चे की जब खुदा ना करता तरबियत ही झूठ की बुनियाद पर होगी तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए, कोशिश क्या कीजिए, लाजमी तौर पर सच को इख्तियार कीजिए, हर हाल में सच बोलिए कि सच ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है और झूठ जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु
अलैहि मुहम्मद।
आइए बच्चों के सवाल लेता हूँ, कौन पहले सवाल करेगा? राइट, सीधी तरफ से।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मेरा नाम मोहम्मद उमर रजा है, निगरानी शुरा। मेरा सवाल है, जैसे पेपर्स में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते हैं, ऐसे ही जन्नत में जाने के लिए कितनी नंबर चाहिए होती है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
बेटा बुनियादी तौर पर बेसिकली तो जन्नत में वही जाएगा जिसको अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अलबत्ता जन्नत में जाने के लिए जो सबसे मेन चीज है वो है बेटा ईमान। ایمان سلامت لے کر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے، یہ اس کی رحمت ہے۔ البتہ اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نیکی کی بھی کریں گے، کہ قرآن میں ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے جو نیکیاں کرتے ہیں۔ تو بیسک تو بیٹا ایمان ضروری ہے، جس کا ایمان نہیں ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی، اللہ اسے جنت نہیں دے گا، یہ پکا بالکل فائنل ہے۔ جنت صرف اس کے لیے جو ایمان لے کر گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس کو چاہے تو جس طرح چاہے جنت میں داخل کر دے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہوتا ہے، اس میں نمبر نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایمان شرط ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا
نگران شورا، میرا آپ سے سوال ہے کہ لائسنس بنوانے کے لیے 18 سال کا ہی ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر 15 سال کے بچے کو اچھی بائک چلانی آتی ہو تو وہ کیا کرے؟
15 سال کے بچے کو اچھی بائک چلانے کیوں آ گئی؟ اس کو تو چلانی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ 18 سال بیٹا یہ ملک کی نیشنل لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ تھوڑا لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے، اور تو یہ صحیح ہے قانون۔ 18 سال چھوٹا ہوگا تو پھر زیادہ اس کے لیے حادثات کے خطرے، پھر 18 سال کا ہوگا تو شناختی کارڈ بنے گا، شناختی کارڈ بنے گا تو پھر یہ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دے کر پھر وہ پاس ہو کر پھر لائسنس بنائے۔ لائسنس سے پہلے کچا لائسنس ملتا ہے، لرننگ سیکھ، ابھی وہ سیکھ رہا ہے، اس کے بعد پھر پکا لائسنس بنتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے بیٹا، شناختی کارڈ بھی تو 18 سال کی عمر میں بنتا ہے۔ جی بیٹا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا صبر کریں، مجھے سلام کا جواب دے دینے دیں۔
میرا نام سید دانیال علی ہے۔ نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے بہت سی اسٹوریز سنی ہیں بھوت اور چڑیلوں کی، کیا یہ واقعی اصلی ہوتے ہیں؟
اصل تو بیٹا جنات ہوتے ہیں اور جنیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جنات، گوسٹ، جنات ہوتے ہیں۔ جنات جیسے مرد اور عورت ہوتے ہیں بیٹا، میل اینڈ فیمیل، اور بچے، تو جنات بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی انسان اللہ کی مخلوق ہے نا۔ جب انسان نہیں تھے نا تب بھی جنات تھے، یہ انسان سے پہلے جنات تھے۔ تو جنات یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ انہی کو مطلب کہ لوگ بھوت بھی کہتے ہیں، بھوتنی بھی کہتے ہیں، یوں سمجھیں ڈرانے کے لیے، مگر بیسیکلی جنات ہوتے ہیں، اور بھوتنی یہ سمجھے کوئی جنی فیمیل۔ تو یوں مطلب کہ ورڈ جو پراپر ہے نا بیٹا وہ جن ہے، جن اور جنیاں، جنات، پھر ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان میں میل بھی ہے فیمیل بھی ہے، یہ ہے۔ تو یہ کہانیاں جو بھوت اور چڑیل اور بھوتنی کی ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی بیٹا جھوٹ پر مبنی بہت کہانیاں ہوتی ہیں، غلط کہانیاں ہوتی ہیں، اور ویسے بچوں کو اس طرح کی کہانیاں سنانی نہیں چاہیے۔ جنوں کے واقعات ہیں، آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات سنائیں، جنات کے واقعات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو جنات ایمان لے کر آئے ان کے واقعات سنائیں، ایسے جنات کے واقعات، جنات کی باقاعدہ پوری ایک ان کا متعلق کتابیں ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ کتاب مل جائے گی، قوم جنات، امیر سنت، ان میں بھی جنات کا انٹروڈکشن تعارف موجود ہے، مطلب کیا ہیں یہ نیک بد، کیا کرتے ہیں، ان کے شر سے کیسے بچا جائے، یہ ہے۔ تو بچوں کو اس طرح مطلب بچوں کو ڈرائیں نہیں۔ اب انسان جیسے انسان میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی اچھے برے جنات ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو، میرا تو تمام تر پیرنٹس کو مشورہ یہی ہے کہ بچوں کے دل میں کبھی بھی خوف پیدا نہ ہونے دیں۔ اب آپ ان کو خوف، اے گلی میں نہیں، بھوت ہے، بھوت کہاں ہے ماں، کیوں بھوت سے ڈراتی ہو؟ وہ بچہ زندگی بھر اندھیرے سے ڈرتا ہے، اب خدا نہ خواستہ گھر میں لائٹ چلی گئی تو بچہ دبک کے بیٹھ جائے، کیوں بھوت ہے، کہاں سے بھوت آ گیا بھائی۔ تو بچوں کو ڈرانے کے بجائے بچوں کے اندر کانفیڈینس پیدا کریں، ان میں ہمت پیدا کریں، احتیاطیں بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن میری درخواست یہی ہے کہ اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، ہمت والا بنائیں، کانفیڈینس والا بنائیں، انہیں ڈر پوک نہ بنائیں، اس سے ان کی जिंदगियों पर बड़ा मनफी असर पड़ सकता है। जी बेटा,
जैसे कि हम देखते हैं बाजू का जो हमारे बड़े हैं वो कहते हैं कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ पे भूत खड़ा होगा, वहाँ नहीं जाओ, तो बच्चों को एक्स्ट्रा डराते हैं।
तो भूत कहाँ से खड़ा होगा?
नहीं,
उस टाइम पे खड़ा होगा, बैठ गया होगा,
वो कहते हैं वहाँ नहीं जाओ, वहाँ पे भूत है, एक्स्ट्रा डराते हैं वो बच्चों को।
बेटा यही मैंने कहा ना कि यूँ नहीं डराना चाहिए, भूत को अंधेरे में जरूर थोड़ी है, भूत उजाले में नहीं आ सकता, और भूत तो मैंने कहा जिन्नात है। तो ये चीजें होती है, लफ्ज भूत का इस्तेमाल भी करना नहीं चाहिए, भूत भूतनी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
और निगरानी शुरा, माफी चाहता हूँ आपकी बात काटी, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और आगे जाके जो उसके मामला होते हैं उसमें उसको कहा जाता है कि बाबा आ जाएगा, ये आ जाएगा, सोते नहीं है तो बच्चे।
अब ये कि बाबा आ जाएगा डराना, मैंने दोबारा उसके ये सब देखे, ये बच्चों के सवाल आते हैं तो ये कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा हम इस तरह करते हैं तो जब छोटा बच्चा पैदा हो, हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो ये बड़ा उसको यूं सुना, सोचो सोचो बाबा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, और वो भी उसको भी बाबा याद आ रहा होता है। तो ये नहीं है, नेचर नहीं होना चाहिए, और इसमें गलत भी है ना, कहाँ से बाबा आ जाएगा, कौन है बाबा आ जाएगा, तो एक झूठ भी है, गलत बयानी भी है, और बच्चों को डराना भी है, इनको कमज़ोर करना है, इनको बुजदिल करना है, नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि गलत ही है, डेफिनेट गलत है। जी बेटा,
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
निगरानी शुदा, मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चों को अलग अलग नाम से पुकारा देते हैं, जैसे गुड्डू, पप्पू, छोटू, अगर मोटा हो तो मोटू, क्या इस तरह के नाम से पुकारना सही है?
नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है, बच्चे को अच्छे नामों से ही पुकारना चाहिए, ये तो बच्चों का हक है कि इनके नाम अच्छे रख रहे जाए। अब गुड्डू पप्पू, अब ये गुड्डू पप्पू जब बड़ा होता है ना तो भी इसको, अब ये कितने गुड्डू का ना कितने पप्पू का बाप हो गया, फिर भी इसको बोला था अब पप्पू, अब पप्पू नहीं है, ये पप्पू का बाप है। तो ये बात होकर बच्चियों को गुड़िया बोलते हैं, बोलते हैं ना बेचारी की या बेटिया पैदा हो गई, अब ये माँ बन के फिर भी गुड़िया है, तो ये इस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए। इनके नाम आप अच्छे नेक सुथरे साफ नाम रखें, किताबें मख्तूतुल मदीना ने किताब दी है इस्लामी नामों के अहकाम, उनमें से मुंतखब करके नाम रखें, कुनियत रखें बच्चे की, फिर उसको उसके नाम से पुकारें। नाम तो बेटा बिगाड़ते भी है तो नाम
जी।
मुनीर होगा मुन्नो है, कुछ और होगा तो वो कर देंगे, तो ये नाम बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। जो अब आपको आपको लगा लंबा नाम है तो रखा कि आपने शॉर्ट नाम रख देते हैं, तो लंबा एक तो नाम आपने तो इतना बड़ा रख दिया उसका, तो छोटा नाम रख देते, छोटा नाम रख कर फिर उसको पुकारते, आप खुद आपने नाम रखा, आपसे नाम नहीं लिया जा रहा, आप बोलोगे मैं प्यार से पुकारते, तो भाई प्यार से बिगाड़ने की क्या जरूरत थी, प्यार में तो बंदा संवारता है, प्यार में बंदा बिगाड़ता थोड़ी है। तो अब आप जो नाम से पुकारेंगे खानदान भर में वही नाम आ जाएगा, तो इस तरह नहीं करें। इनका जो आपने अच्छा खूबसूरत सा नाम रखा है उसी नाम से इसको पुकारेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे भी इसी नाम से पुकारेंगे, तो खानदान और बाहर भी इसी नाम से पुकारेंगे, स्कूल में भी गुड्डू पप्पू मोटू छोटू सब ये चलता रहेगा, और ये बुरा है। तो बुरे नाम के ताल्लुक से कुरान करीम में है, और बुरे नामों से ना पुकारो, तो फिर इसकी पूरी एक तफसीर है, तो चलें लगे हाथों आप ये आयत भी सुन लें और इसकी तफसीर भी चले आपको मैं दिखा भी देता हूँ सुना भी देता हूँ।
वला तनाबज़ू बिल अल्काब, तर्जमा, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। बुरे नाम रखने से क्या मुराद है, इसके बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं, इनमें से तीन कौल दर्ज ज़ेल हैं। नंबर एक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, एक दूसरे के बुरे नाम रखने से मुराद ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी बुराई से तौबा कर ली हो तो उसे तौबा के बाद उस बुराई से आर दिलाई जाए। यहाँ आयत में इस चीज से मना किया गया है। नंबर दो, बाज़ उलमा ने फरमाया, बुरे नाम रखने से मुराद किसी मुसलमान को कुत्ता या गधा या सुअर कहना है। नंबर तीन, बाज़ उलमा ने फरमाया कि इससे वो अलकाब मुराद हैं जिनसे मुसलमान की बुराई निकलती हो और उसको नागवार हो, लेकिन तारीफ के अलकाब जो सच्चे हों ममनू नहीं, जैसा कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हों का लकब अतीक, और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों का फारूक, और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हों का जुन्नूरैन, और حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو تراب اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا سیف اللہ تھا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
نگرانی شورا بعض وقت اگر انسان کا نام ہے جیسے بلال تو اس کو جانور کا نام بنا دیا بلی۔
بلی کہ بلو؟
بلو یا بلی
نہیں کرنا چاہیے۔ بلال تو کتنا پیارا نام ہے، بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اگر نام رکھا ہے تو کتنا اچھا نام ہے۔ جو آپ ملے سنگے چلو شعر پڑھتے ہیں مل کر، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے سب مل کر، سب مل کر پڑھتے ہیں۔
جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے تو بلال اور اویس بہت نام رکھے، بہت پیارے نام ہیں۔ تو یہ بھی کوئی بھی نام ہو، اچھا نام آپ نے رکھا، ویسے نام بگاڑنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ بچیوں کے نہ بچوں کے۔ جی آپ پوچھیں۔
بعض اوقات بچے ایک دوسرے کی چیڑ بناتے، اس میں نہ تو حمد کی بھی بے حرمتی ہو جاتی ہے،
اللہ اللہ اللہ،
کیا یہ درست ہے؟
یہ کیسے کرتے ہیں، نعت اور حمد کو کیسے بناتے ہیں؟ کوئی ایگزامپل؟
شعر میں کوئی اور الفاظ ایڈ کر کے پھر بنا دیتے ہیں۔
اللہ، نہیں بیٹا دیکھو نا، اس طرح کوئی بھی چیزیں ہم بگاڑیں گے تو یہ تو اچھے اور مقدس شعر کو بھی ہم نے خدا نہ خاصا بگاڑ دیا اور کسی کا نام بھی بگاڑ دیا، اس میں بعدوں کا تنگ کرنا ہوتا ہوگا نا۔ تنگ کر دے، تنگ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں،
بولا جاتا ہے چڑھانے کے لیے، بولا جاتا ہے اس کو۔
نہیں نہیں، یہ چڑھانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، دل دکھانے کے لیے تو بولنا بھی نہیں چاہیے، دل خوش کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی جی بیٹا، اب کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ پچھتے ہوئے تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جگہ بدل دی، کرسی بدل دی، جگہ بدل دی، جگہ بدل دی۔ چلو،
جیسے کسی کی طبیعت خراب ہو تو وہ ہاسپٹل میں ہو، آپ رشتے داروں وغیرہ کو بولیں کہ آپ اس کو ہاسپٹل میں دیکھنے چلے جائیں، وہ نہیں جائیں اور جان بوجھ کے اپنا ایکسیڈنٹ کر لیں تو ایسے جان بوجھ کے کر لیں تو ایسا کرنا کیسا؟
جان بوجھ کے کیسے ایکسیڈنٹ کرتا ہے؟
جیسے جان بوجھ کے اپنے آپ کو خود ہی لگوانا، گر جانا یا سیڑھیوں سے پھسل جانا۔
یا اللہ، یہ کرتے ہیں
اسکول کے بچے وغیرہ؟
کچھ بچے ایسے اسکول میں بھی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں کہ کل اسکول نہ آئے،
ڈیوٹی اندر دی،
ڈیوٹی ہو جائے،
ڈیوٹی اندر دی،
جان بوجھ کے گر جاتا ہے، جان بوجھ کے، او لگ گئی، او
چھٹی ہو جائے گی، کل اسکول کی چھٹی ہو جائے گی، یا اسکول نہیں آنا پڑے گا، یا مدرسہ نہیں جاؤ، یہ وہ۔
نہیں تو یہ تو غلط ہے نا، دھوکا ہے نا، اس کو کیا بولیں گے؟
دھوکا،
فراڈ۔ دھوکا تو، یعنی دھوکا کافر کو دینا بھی ناجائز ہے، مسلمان کو دھوکا دینا، وہ بھی ماں باپ کو دھوکا دینا، وہ بھی استاد کو دھوکا دینا، اللہ اللہ، استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ، کبھی بھی دھوکا نہیں دینا چاہیے، غلط بات غلط بات غلط بات، ٹھیک ہے؟ دھوکا نہیں دینا چاہیے
انشاءاللہ۔
اب آپ دھوکا دو اور آپ بولے لگ گئی، اب تھوڑے دن کا پتا چلے لگی تو تھی نہیں، تو یہ تو بے عزتی ہوگی۔ پھر جب سچی لگے گی نا تو گھر والے بولے گا لگی ہی نہیں، جھوٹ موٹ کر رہا ہے، تو پھر سچا سچا بھی جھوٹ لگے گا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟
ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ سو رہا ہے، اس کو صبح اسکول جانا ہے، تو وہ اس کا دل کہتا ہے کہ مجھے نہیں آنا اسکول صبح، تو ایسی یہ بھی ایک سے ڈرامے بازی ہو گئی کہ وہ کہتا ہے مجھے میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کہ آج میں اسکول چلے جاؤں گا، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا، تو پھر وہ اپنے طرف جو سب کو متوجہ کرتا ہے کہ بھائی میرے دیکھیں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔
جھوٹ بولا نا بیٹا،
بالکل جھوٹ، یہ
جھوٹ ہے نا، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے، اور جھوٹ کے تو نقصان آتے ہیں۔ میں نے جب واقعہ شروع کیا تو اس میں بھی میں نے یہی سمجھا نا، ایک بچہ تھا، یہ بڑا شرارتی بچہ تھا، یہ کیا کرتا تھا کہ گاؤں کے پاس وہ دور سے چلاتا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، لوگ بھاگ کر آ جاتے شیر آیا، بولے آیا ہی نہیں آیا ہی نہیں، تو لوگ چلے جاتے واپس آیا ہی نہیں۔ ایک دن वाकई शेर आ गया, उसने जोर से पुकारा बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया शेर आया। लोगों ने कहा ये मजाक करता रहता है, तो शेर आया उसको चीर फाड़ कर चला गया। अब देखो झूठे आदमी पर बेटा को भरोसा नहीं करता, नहीं बेटा पहले जब जिस दिन पता चल गया ना बेटा, जिस दिन ये पता चल गया ना कि ये झूठ बोलता है, तो ये याद रखना बेटा झूठे का ये अजीब अंजाम है कि झूठे पर कोई भरोसा नहीं। जब फिर झूठा जब शख्स सच भी बोलता है ना तो लोग समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। तो मेरी तमाम बच्चों से बड़ों से ये दरख्वास्त है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सांच को आंच नहीं, सोच सकते सच बोलने में। जैसे आप हो गया चलो गलती हो गई, कहीं सी जगह चले गए जहां नहीं जाना चाहिए था, अब जब माँ बाप पूछेंगे तो सच बोलें, झूठ ना बोलें। ठीक है थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपको शर्मिंदगी हो सकता है, कुछ अम्मी अबू को नाराज हो जाए, कोई गुस्सा कर दें, वैसे सच पर कोशिश करें गुस्सा ना करें, लेकिन अगर हो जाए तो भी आप ये सोचिए कि इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। ठीक है तो झूठ कभी भी नहीं बोलना है।
यानी छोरे अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो हम उस पर कैसे यकीन करेंगे ये सच्ची बोल रहा है झूठ बोल रहा है?
हमारे पास जब तक के कोई शरई सबूत नहीं होगा, कोई वाजे दलील नहीं होगी, तब तक हम हर एक हम झूठ ये भी तो नहीं कह सकता ना अगला झूठ बोल रहा है। तो हुस्ने जन तो रखना पड़ेगा, जब तक कि बिल्कुल वाजे हो ना, क्लियरली पता ना हो और ऐसी साइन ना हो, क्लियरली साइन ना हो, अलामत ना हो, जिसको वाजे करीना कहते हैं, तो तब तो हमको सच्चा ही समझेगा ना बेटा। जी बेटा
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अत्तारी है। निगरानी शुरा मेरा आपसे सवाल ये है, हमें अगर किसी चीज के लिए रोका जाए, हमें अगर किसी चीज के लिए डराया जाए तो ऐसा करना ठीक है? जैसे वहाँ बिल्ली है या डॉगी है, वहाँ ना जाओ आपको काट लेगा।
देखिए बेटा ये डराना नहीं है, इसको कहते एहतियात, क्योंकि ये आपको पता है कि कुत्ता डॉग काटता ही है। अब मिसाल के तौर पर बकरा ईद में बच्चे बकरे को खिलाने जाते हैं, अब बकरे के सींग भी तो होते हैं ना, अब ये मार दे तो जानवर उसको थोड़ी ना उसको कान में बोलो कि मैं आया हूँ हैं तेरा ख्याल रखना हैं मारना नहीं आ, उसको समझ में तो नहीं आएगा ना। तो अब आप जाओ और आप बोलो मैंने तो कान में बोला ना, बकरे ने यूं थोड़े सर हिला दिया था, समझे मेरी बात मान गया है, वो यूं सर हिलाते हिलाते बेचारा वो मार देगा। तो इस तरह जानवर से, जानवर तो बेटा जानवर है ना, अकल तो होती नहीं है, तो कुत्ता काट ले या बिल्ली पंजा मार देती है बाजू का ना,
बिल्कुल
बिल्ली पंजा मार देती है। तो ऐसे में अगर वालिदैन कहते हैं कि मत जाओ, तो ऐसी सूरत में नहीं जाना चाहिए, वैसे दूर रहना चाहिए, जानवर के करीब जाकर बेटा क्या करेंगे?
अगर वहाँ वो हो ना तो ये झूठ कहलाएगा?
नहीं, अगर वाकई अगर ना वहाँ कुत्ता है ना बिल्ली है ना कोई जानवर है, और अगर कहते हैं कि वहाँ मत जाना कुत्ता है भी, तो ये तो झूठ है, गलत है, और ये कभी भी वालिदैन को नहीं करना चाहिए। ठीक है
निगरानी शुरा, मेरा ये सवाल है कि हम कैसे जान ले कि शैतान हमें बहका रहा है?
शैतान का काम ही बहकाना है बेटा, शैतान कभी अच्छा काम करता ही नहीं है, शैतान कभी भी हमारा भला करेगा ही नहीं। तो जो हम बुराइयां करते हैं गुनाह करते हैं जी, शैतान और नफ्स इन्वॉल्व होते हैं। जी बेटा
मेरा नाम आशिक अली है, और जैसे बाज़ घरों में अब्बू अम्मी मना करते हैं घर में ना खेलें, तो बच्चे घर में ना खेलें तो और क्या करें? अगर बाहर जाते हैं तो फिर भी वो मना करते हैं कि वहाँ मत जाओ, कोई पकड़ के ले जाएगा, तो इस सूरत में क्या करें?
कभी कभी हालात तो बेटा ऐसे हो जाते हैं कि जब बच्चे उठते हैं तो उसमें ज़्यादा माँ बाप एहतियात करते हैं, और मैंने पहले भी पुराने में कहा है कि बच्चों को चाहिए कि वो बाहर खेलने के बजाय घर में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रख लें कि जिससे उनको जिस्मानी और जहनी वर्जिश बनती रहे, और जब माँ बाप मना करते तो घर में रहें। अब घर में बच्चे खेले आप बोलोगे अब घर में मत खेलो तो फिर बच्चा किधर जाएगा? आप छत पर चले जाओ उसको, हर एक की छत भी नहीं होती और हर एक वक्त छत पर जाना भी मुनासिब हो ये भी जरूरी नहीं होता। तो बच्चों के साथ कुछ इंडोर किस्म की एक्टिविटीज मैनेज कर लें वालिदैन चाहें तो, वो करना चाहिए ताकि वो आपके साथ इंगेज रहेगा बच्चा, जब आप जब तक आपके साथ इंगेज है आपके साथ मसरूफ है तो डेफिनेटली इसको इतना बाहर की तरफ उसका रुझान नहीं। देखिए बच्चे को एक्टिविटी चाहिए, बच्चे को मसरूफियत चाहिए, उसको थोड़ा सा ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर वालिदैन सोच समझ कर अच्छे अंदाज से लेंगे, जो मैं अब कई प्रोग्रामों में अर्ज कर चुका हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दें। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वालिदैन इन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि कंसिडर करें जो मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें, ये टाइम है कि आप इनको टाइम दें। ये अभी इस उम्र में है कि ये आपके साथ बैठेंगे, ये इस उम्र में है कि ये आपके साथ बैठकर एक अच्छा फील करेंगे, क्योंकि इनकी अभी वो पोजीशन नहीं आई, अभी वो इनकी वो दिमाग की वो सिचुएशन नहीं है जो आगे 2-4-5 सालों में हो सकती है। तो ये इस वक्त आपके साथ इंगेज हो जाएंगे, इनको आपसे बातों में अभी मज़ा आ जाएगा, जबकि आप भी इनसे इनकी अक्ल समझ और तबीयत के मुताबिक डिस्कस करें तो अभी आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी टाइम नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये कुछ और मांगेंगे कि हम अपना टाइम कहाँ एक्सपेंड करें। फिर वो उल्टी सीधी डिवाइसेस की तरफ, उल्टे सीधे चैनल्स की तरफ, या उल्टे सीधे गैदरिंग की तरफ ये फिर चले जाएंगे, जब फिर कुछ और हो जाएगा। तो दे नीड टाइम, तो इनको टाइम दें और कंप्रीहेंसिव और बड़ा मतलब के एक खूबसूरत टाइम दें। इसके लिए आप अपनी तालीम, अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो नॉलेज है, इसको यूटिलाइज करें। बुक्स पढ़ें, माशाल्लाह एक से एक बुक्स हैं वो पढ़ें, और मक्तबतुल मदीना की जो वेबसाइट है उसका विजिट करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो इससे इनको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला, इनकी जहनी नशोनुमा बहुत अच्छी हो जाएगी, और ऐसे ही इनको टीचर अच्छे प्रोवाइड करें, उस्ताद अच्छे प्रोवाइड करें। आप प्लीज़ जस्ट चेक करें कि इनका टीचर कौन है, इनके उस्ताद कौन है, और उनकी वो डायरेक्शन क्या दे रहे हैं टीचर उस्ताद। ऐसा ना हो कि आप इन्हें कुछ और बता रहे हो और उस्ताद इनको किसी और डायरेक्शन पर लेकर जा रहे हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों के लिए उस्ताद का इंतखाब सोच समझ के करें। उस्ताद नेक होता है, खौफ खुदा वाला होता है, सच्चा आशिक रसूल होता है, उसके हाथ अपने बच्चे की तरबियत दें, वो आपके बच्चे की तरबियत इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज से करेगा, और उस अंदाज से करेगा कि आपका बच्चा आपका रहेगा, वरना ऐसा ना हो ना उनका रहे ना उनका रहे, बच्चा कहीं और निकल गया। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी बच्चा,
निगरानी छोरा इस टॉपिक के बारे से बात कर रहे थे, तो जो अब्बू जो अब्बू की जो ऑफिस टाइम है तो वो बहुत लेट है। अब जैसे अब्बू सुबह निकलते हैं 7 बजे तो वापसी आते हैं घर रात को लेट नाइट 2-3 बजे।
किसी के अब्बू?
किसी के अब्बू, समझने वही तो
नहीं, समझ लो, जरूर ये समझ लो, चले आप समझाएं।
अब फिर टाइम नहीं, बच्चा उनको दे नहीं पाते, तो अब इसमें क्या करें?
अब देखिए बाद औकात अब्बू की मसरूफियत बढ़ जाती है, नो डाउट, तो अम्मी टाइम दे।
बिल्कुल
ठीक है, अम्मी भी तो टाइम दे सकती है ना, अम्मी टाइम दे। और अच्छा, अब्बू पूरा हफ्ता तो बिजी नहीं रहते होंगे, छुट्टी भी होती होगी। अच्छा, छुट्टी भी नहीं होती। अच्छा, अबू कई कई दिनों तक भी नहीं आते, आते तो होंगे। अगर फॉर एग्जांपल के अबू कहीं ऐसा बिजी हैं, कोई निकी की दावत का काम है या कोई ऐसी घरेलू ज़रूरियात के तहत, रोज़गार के तहत, फॉर एग्जांपल के अगर अबू एब्सेंट हैं, नहीं मतलब के घर पर उनकी अटेंडेंस है, तो डेफिनेटली ऐसे मौके पर माँ को की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा वो गैप जो है उसको फील करना है, उसको पूर करना है अम्मी को, और वो टाइम देना है। तो इंशाल्लाह ताला इससे बच्चे को अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन वालिद को चाहिए कि वो अगर फॉर एग्जांपल घर पे नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दी नेकी की दावत के लिए, अगर वो बाहर ज़्यादा रहते हैं, मदनी काफिलों में सफ़र करते हैं इस तरह के, या बाहर रोज़गार के तौर पर आप गए हुए हैं, वॉट एवर, कनेक्ट तो रहें अपने बच्चे के साथ। ऐसे चीज़ें आ गई हैं, बच्चे को ना दें कोई ऐसा मोबाइल वगैरह, लेकिन घर में तो कांटेक्ट के कई सूरतें होती हैं, तो उस पर बच्चे के साथ बात करें। अब देखें जब दूर हैं तो उस कमी को जितना हो सके आप पूरी करने की कोशिश तो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इससे बच्चे की काफ़ी जहनी तौर पर जो तरबियत होगी वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
मेरा नाम समीर अत्तारी है। निगरानी शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या बच्चे कभी किसी को सिखा नहीं सकते, क्या हर चीज बड़ों को ही मालूम होती है?
बच्चे भी क्यों नहीं सिखा सकते, बच्चे तो सिखाते भी हैं। जब आपके घर में छोटा सा बच्चा कुछ गर्म बर्तन पकड़ने जाता है तो आप तो रोकते हो, नहीं 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 नहीं। तो जो आता है तो वो अपने आपकी जितनी उम्रें हैं तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं इन्हें आप सिखाएं, इन्हें अदब सिखाएं, ये ज्यादा उछल कूद ना करें, मस्तियां ना करें, ये अदब जिसको कहते हैं ना, अदब और मैनर सिखाएं। इसमें बेटा होता ये कि सुनकर कम देखकर ज्यादा सीखा जाता है। तो आप अच्छा करेंगे ना तो आपको देखकर आपके छोटे भाई बहन भी अच्छा करेंगे, और आप शाउटिंग करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जिद करेंगे, बहस करेंगे, अम्मी अब्बू के साथ उलझेंगे, डांट डपट करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो छोटे भाई बहन पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है, वो उसी को फिर देखते हैं। तो इससे ये सिखाने को तो बेटा है। जी बेटा,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम मोहम्मद हसन है। निगरानी शुरा, मेरा यह सवाल है, स्कूल की बुक्स इतनी भारी होती है कि कंधों में दर्द हो जाता है, क्या हम बुक्स और कॉपीज की जगह कुछ और नहीं ले जा सकते? अब तो डिजिटल दौर है तो टेबलेट में सब कुछ आ जाता है।
नहीं, टेबलेट में भी, उसके अलावा भी बेटा सब कुछ आ जाता है। तो टेबलेट की तरफ तो यूं जाना नहीं समझ में आता, हर एक की एक एज होती है हर काम की, और ये बाहर कई मुल्कों में इस चीज़ को समझा गया है कि बच्चे के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कब देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए। ठीक है, रही बुक्स, तो होना तो वाकई ये चाहिए कि वेट कम हो, लेकिन अब ये है ट्रेंड कि वाकई बैग बहुत भारी होता है। अब ये तो जो एजुकेशन इंडस्ट्री है और इंस्टीट्यूशन इन्हें चाहिए कि बच्चों की एज और इनकी जो कितना ये वेट उठा सकते हैं आपके सामने, बैग के पट्टे टूट जाते हैं, हैंडल टूट जाते हैं, एक तो बैग पक्के नहीं बनते, बनाने वाले तो कच्चा बना कर देते हैं, देते बड़े खूबसूरत है लेकिन थोड़ा सा बच्चा उठाता तो निकल गया हैंडल हाथ से, और कभी फट जाते हैं। तो वैसे वालिदैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं खूबसूरती की वजह से नहीं, मजबूती देखकर बैग लिया करे। बच्चा बैग कितना केयर करेगा, और फिर दो कंधों वाला भी बैग आता है वो ले लें। अब तो ट्रॉली वाले भी बैग आते हैं, वो थोड़े हैवी होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, तो वो भी मतलब के अगर लेना चाहें, लेकिन उसमें देख लीजिएगा अदब अदबी का कोई ऐसा शायबा ना हो। टूट तो बेटा मतलब देखें, चीजें अगर संभाल कर इस्तेमाल करेंगे ना बेटा तो कम टूटेंगे। टूटती तो है चीज, लेकिन अगर आप अल्लाह ना करे फेंकेंगे, या मतलब कि इसको उठाने का अंदाज अगर आपका गलत होगा, या आप बोले सीढ़ी पर भी टट 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 करके आप लेके चले जाएं, तो बेटा फिर वो लोहे का बैग भी थोड़ा वो टूट जाएगा। तो यूं होता है, तो एहतियात आपको करनी पड़ेगी। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने प्रोग्राम बच्चों के मसाइल देखा। अल्लाह ताला आपको और हम सबको नेकी और तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। आपके साथ ये सिलसिला लेकर आते हैं, प्रोग्राम लेकर आते हैं, बच्चों का मदनी चैनल देखते रहिए, और बच्चों के मसाइल भी आपको बयान किए जाते हैं, बच्चों के मसाइल का हल जो एक नाकिस अकल में आता है वो भी हल कर अर्ज करने की हम कोशिश करते हैं। बेसिक जिम्मेदारी वालिदैन की बहुत भारी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी को हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों का मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम को प्रमोट करते रहें, इसका इन्विटेशन हम करते रहें, इंशाल्लाह ताला घरों में और बाहर अच्छा माहौल बनता महसूस करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।